डॉक्टर राधा सुखानी आज हमारे बीच हैं। आप शिकागो में पिछले 45 वर्षों से रही हैं और हमारे बीच आज आप डायबिटीज और ओबेसिटी के ऊपर उनका प्राकृतिक समाधान हमें बताएंगी। ओवर टू डॉक्टर राधा सुखानी।
ओम शांति। सब आप आगे आ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं शुरुआत करना चाहती हूं बाबा की मुरली के सबसे सुंदर विचार से। आपने कई बार बाबा की मुरली में सुना होगा, बाबा कहते हैं बीते बच्चे निरोगी बनो, निरोगी बनेंगे तो योग अच्छा लगेगा। अब इस आदेश पे थोड़ा ध्यान दीजिए। वो कहते हैं जैसे कि ये आदेश या निर्देश है कि निरोगी बनो, इसका मतलब निरोगी बनने का पुरुषार्थ किसको करना है? हमें खुद ब खुद करना है। अगर आप अपनी आधुनिक बीमारियों को देखेंगे तो जितनी भी आधुनिक बीमारियां हैं जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, स्ट्रोक, कैंसर, ये सब पौष्टिक आहार की कमी और असंतुलित दिनचर्या की वजह से हैं। इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? अगर हमारा आहार पौष्टिक नहीं और हमारी दिनचर्या संतुलित नहीं तो इसमें किसका दोष है? हमारा ही। हमारे ही पुरुषार्थ से हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। अब ये कहा जाता है कि किसी भी बीमारी को निवारण करना है तो उसका क्या होना चाहिए? कारण पता होना चाहिए। इफ देर इज वी डोंट नो द कॉज देर इज नो क्योर। अगर हमें उसका कारण न पता तो हम उसका निवारण कैसे करेंगे? तो इसका कारण भी पता होना चाहिए कि ये आधुनिक बीमारियां क्यों हो रही हैं। हमारी मेडिकल साइंस ने बड़ा एडवांस किया और बड़ी भारी महामारियों को खत्म कर दिया, पोलियो, स्मॉल पॉक्स। अच्छा, मेरे को बताया था हिंदी में करना। अच्छा, मैं बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूंगी, हालांकि मैं ज्यादा इंग्लिश में ही बोलती हूँ, मैंने इंग्लिश में ही पढ़ाया है, पर मुझे हिंदी के साथ बहुत लगाव है और मैंने कई टॉक्स हिंदी में किए हैं। हिंदी में कुछ और ही आनंद आता है तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं ये कह रही थी अगर आपको कारण न पता तो आप निवारण कैसे करेंगे? और कारण पता होने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए कि ये बीमारियां होती कैसे हैं, ठीक है ना? अगर आपको किसी समस्या के बारे में पता है तो उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर अज्ञान है तो क्या होता है? आप पावरलेस हो जाते हो। ज्ञान है तो आप शक्तिशाली हो जाते हो, समझ जाते हो। अब आम जनता में क्या होता है, डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर आपको डायबिटीज का कारण तो बताता नहीं, मोटापे का कारण बताता नहीं, क्यों हार्ट डिजीज भी कारण तो बताता नहीं, लेकिन आपको एक नुस्खा दे देता है। अगर आपको कारण न पता चला तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका इसमें क्या योग है कि आप खुद ब खुद इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें। मैं यही कहती हूं कि अगर हम इन बीमारियों के बारे में जानें कि ये बीमारियां सारी पौष्टिक आहार की कमी और दिनचर्या के असंतुलन से हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, इन बीमारियों से निवारण कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज होती क्यों है। डायबिटीज का जो कारण है वही कारण मोटापे का होता है, दोनों का भाईचारा है। टू द पॉइंट कि हम अमेरिका में ये बोलते हैं ओबिसिटी प्लस डायबिटीज डायबेसिटी, उसका नाम लगाया है डायबेसिटी, क्योंकि 80% लोग जिनको डायबिटीज है उनको मोटापा है। और अगर सारे शरीर का मोटापा नहीं तो पेट का मोटापा है, थोड़ा पेट बाहर निकला जाता है। मांसपेशियां थोड़ी कमजोर होती हैं तो वो पतले होते हैं तो भी इनको डायबिटीज हो जाती है क्योंकि इनके पेट में फैट ज्यादा है। तो ये डायबिटीज जो है अपने शरीर की ऊर्जा के असंतुलन से होती है। ऊर्जा मीन्स एनर्जी। अब आप बताइए मुझे कि हमारे शरीर की ऊर्जा किससे बनती है, कोई भी बताइए। हाँ जी, भोजन। भोजन में कौन सा अंश है जिससे ऊर्जा बनती है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमारी ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा बनाता है। तो ग्लूकोज हमारा क्या है? मूल ऊर्जा का अंश है। ऊर्जा का मूल अंश क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने वाली चीज क्या होती है, कौन सी हार्मोन होती है जो डायबिटीज के मरीज में आखिर में दी जाती है? इंसुलिन। सबको पता है इंसुलिन, ठीक है ना? तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर डालती है, तब ऊर्जा बनती है। इंसुलिन क्या है? तब हमारी जीवन शक्ति है। ग्लूकोज हमारी जीवन शक्ति है। अगर इंसुलिन ना तो जीवन ना। जब टाइप 1 डायबिटीज होती है छोटे बच्चे को, उसको इंसुलिन बनाने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो क्या है, वो कुछ दिन भी नहीं जीता, कुछ हफ्तों में चल बसता है। 1935 और 38 के बीच में इंसुलिन का आविष्कार हुआ था। इंसुलिन के आविष्कार से पहले ये बच्चे बच न सकते थे, और जब इंसुलिन का आविष्कार हुआ तो ये बच्चे जीने लग गए। इसका मतलब इंसुलिन का इतना इम्पोर्टेंस है, इतनी बड़ी जीवन शक्ति है, वो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने में मदद करती है। इसी के असंतुलन से हमारे को डायबिटीज होती है। वो इसलिए होती है कि जब हम आहार पौष्टिक नहीं खाते, हमारे आहार में महीन आटा और शुगर की बहुत ज्यादती होती है, तो इतना ज्यादा शरीर में ग्लूकोज हो जाता है कि हमारा सेल उस ग्लूकोज को संभाल नहीं सकता। क्योंकि ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है, और अगर ग्लूकोज सेल के अंदर ज्यादा डाल दिया जाए, सेल हमारे शरीर में छोटे छोटे अंश होते हैं, कोई अरबों खरबों सेल्स होती हैं, एक एक सेल में अपना अपना छोटा छोटा किचन समझ लो, रसोई बनी हुई है जिसके अंदर ऊर्जा बनती है, पकती है ऊर्जा, हीट निकलती है। अगर ज्यादा ग्लूकोज डाल दिया जाए सेल में तो सेल भस्म हो जाता है। तो शरीर को इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा आटा, महीन आटा, मैदा, मिल्क फ्लावर खाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए दो पॉइजन है, सबसे बड़े विषैले पदार्थ क्या है, बहुत ज्यादा चीनी और बहुत ज्यादा महीन आटा, मैदा, और जो आजकल का आटा मिलता है, क्योंकि आजकल का आटा जो मिलता है उसके अंदर न तो छिलका होता है न अंकुर होता है, वो मैदे के जमाने होता है, फिर भी हम उसको बोलते हैं होल व्हीट। आटा हमारा वो था जब 40-50 साल पहले हम डब्बा लेके पिसवाने जाते थे, वो था आटा। अब गेहूं भी चेंज हो गई है, जेनेटिकली मॉडिफाई हो गई है, और जो आटा है वो मिल्का हो गया है, उसमें तो वाइटामिन्स हैं न उसमें और कोई ताकत है, उसमें तो बस शुगर ही शुगर है। तो इसीलिए हम कहते हैं जितना कम आप व्हीट का आटा खाएंगे बाजारी, उतना ही हेल्दी रहेंगे। तो आजकल देखें कितनी तरह तरह के अनाज आ गए हैं, उनमें से रोटियां बन रही हैं, ठीक है ना? तो शुगर और इनकी वजह से, इसकी आटे की वजह से ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है शरीर में, तो सेल कहता है हमें नहीं चाहिए ज्यादा ग्लूकोज, तो वो इंसुलिन का को बहिष्कार कर देता है, हमें नहीं चाहिए ज्यादा इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन ऐसे काम करती है कि हर सेल के बाहर एक ताले जैसा रिसेप्टर होता है, इंसुलिन उस ताले को खोलती है, तब ग्लूकोज जा सकता है। जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो सेल अपना ताला बंद कर देता है, आ जाओ मैदान में, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे जला दोगे। तो इंसुलिन से हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसी से ही डायबिटीज बड़ी उम्र में होती है। जो बच्चों की डायबिटीज है तो सिर्फ 5-10% में होती है। ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज जो विश्व में है वो टाइप 2 डायबिटीज है, जो इस वजह से होती है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होता है, हमारे शरीर के सेल इंसुलिन को बहिष्कार कर देते हैं। हालांकि इंसुलिन खूब चल रही होती है शुरू में, ज्यादा से ज्यादा आती है, खूब धक्के देती है, लेकिन सेल कहता है हमें नहीं चाहिए। नहीं, अगर ग्लूकोज अंदर जाता ज्यादा तो ऊर्जा की कमी हो जाती है, उससे के बाद बीमारी शुरू होती है। अब इंसुलिन का यह भी काम होता है कि न कि उसी टाइम की ऊर्जा बनाए, पर अगर जब हमें खाना नहीं मिलता तो भी तो हमें ऊर्जा चाहिए। जब खाना नहीं मिल रहा, हम कोई 24 घंटे खाना थोड़ी खा रहे हैं, अगर हम 5 दिन खाना न खाएं तो हम जी सकते हैं। वो ऊर्जा कहां से आ रही है? वो ऊर्जा वहां से आती है कि जो बचा खुचा ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन फैट में डाल देती है। उसका फैट बना देती है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व एनर्जी, पीछे पड़ी हुई है। तो समझ लो वो ऐसे है जैसे ऊर्जा को बैंक में डाल दिया हुआ है। अब पुराने जमाने में ये होता था कि हम लोग इतनी बार बार खाना ना खाते थे, ठीक है। अगर आप देखें डायबिटीज कितने सालों की बीमारी है, 50 साल पहले कितनी डायबिटीज होती थी विश्व में और कितना मोटापा था, हाँ जी, बहुत कम। आप हैरान हो जाएंगे कि 50 साल पहले 1970 से पहले मोटापा 5% से कम लोगों में था। और आप सोच समझते वो कौन से 5% लोग थे, जिनको खूब खाते पीते भरे घराने के लोग थे, उनको किसी को मोटापा हो जाता था सारे विश्व में, अमेरिका इंक्लूडेड। अब तो अमेरिका में 60% लोग मोटे हैं और डायबिटीज भी बुरी तरह से है सबको। तो ये बीमारी जो है ये इसलिए आई कि हमारा खाना बदल गया, हमारी दिनचर्या बदल गई। और 1970 और आज के बीच में डायबिटीज महामारी हो गई। अब मेडिकल साइंस को देखिए, इतनी बड़ी बड़ी महामारियां उन्होंने संभाल ली, स्मॉल पॉक्स को हटा दिया, पोलियो को हटा दिया, सब हटा दिया। सर्जिकल प्रॉब्लम होता है तो अच्छे से अच्छी सर्जरी होकर ठीक कर देते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, इसका इलाज पूरा नहीं हुआ, उसका निवारण नहीं हुआ। हो जाता है क्या? अगर आपको एक बार डायबिटीज हुई तो आप उससे निवारण हो जाता है क्या आपका? कोई दवाई ऐसी है जिससे आपका डायबिटीज का निवारण हो जाता है? आप क्या कर रहे हैं डायबिटीज में? ग्लूकोज को गिरा रहे हैं बस। हाई ब्लड प्रेशर में क्या कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर को गिरा रहे हैं दवाई से। हम बीमारी के लक्षण का इलाज कर रहे हैं, हम बीमारी का निवारण नहीं कर रहे, ठीक है। हार्ट अटैक होता है तो कोलेस्ट्रॉल गिराने की दवाई दे दी जाती है। मोटापा है तो कहते हैं खाना कम खाओ और भाग दौड़ो। खाना कम खाओ और भाग दौड़ो करते करते तो आज 40 साल हो गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बोलते हैं। ईट लेस मूव मोर, मतलब खाना कम खाओ और भागते रहो, ऐसे डाइटिशियंस, जिम ट्रेनर्स, एक्सरसाइज ट्रेनर्स ने कमा लिए बिलियंस। लेकिन मोटापा न गया, महामारी चलती गई। डायबिटीज में इंसुलिन लगाई, कम से कम 50 दवाइयां आ गई हैं डायबिटीज की, लेकिन डायबिटीज का निवारण नहीं हुआ, सिर्फ उसके ऊपर ग्लूकोज गिराने का मसाला बना, ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर गिराने की दवाई मिली, लेकिन उनका निवारण न हुआ। उनका निवारण किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। अगर हम अपना आहार पौष्टिक बना देंगे वापस जैसे हम 50 साल पहले थे, और हम दिनचर्या संतुलित करेंगे, तो हमारे को ये बीमारियां पहले तो होंगी नहीं। हम अपने बच्चों को बचा लेंगे। आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, शहरों में मोटे हैं। 30% 100 में से 30 बच्चे मोटे हैं। गरीबों में 40% बच्चे पतले, दुबले, मेल न्यूट्रिटेड जिनको बोलते हैं वो हैं। तो ये बीमारी शहरों की बीमारी है। अब आप लोगों में से हाथ उठा के बताइए कि किन लोगों को डायबिटीज है या उनकी फैमिली में डायबिटीज है। आधे पे आधे हाथ उठ जाते हैं। ये इतनी बड़ी महामारी है। मैं एक कविता आपको आज में बताऊंगी, पर उसकी दो लाइनें बताऊंगी। ये शहरों की बीमारी है। भारतीय शहरों के घर घर में छाया है मधुमेह। कारण है असंतुलित भोजन, दिनचर्या और कृत्रिम आहार से स्नेह। हमारा खाना नकली है बहुत ज्यादा। 50 साल पहले आपने सुना था कभी कि हम डब्बों में से सीरियल से ब्रेकफास्ट खिलाएंगे बच्चों को, सीरियल के डब्बे देंगे, कि हम इतनी डबल रोटी खाएंगे जो हम आज खा रहे हैं। डबल रोटी के एक टुकड़ा सफेद डबल रोटी का एक टुकड़ा 5 या 6 चम्मच चीनी के बराबर है। आजकल की रोटी जो मिल्ट फ्लावर में से बनी हुई है, व्हीट फ्लावर में से, वो शुगर क्यूब के जैसे है। एक पाव जो हम खाते हैं बहुत पॉपुलर है बॉम्बे में और महाराष्ट्र में, एक पाव 8 या 10 चम्मच चीनी के बराबर है। हम इतनी चीनी खा रहे हैं कि हम अपने शरीर को भस्म कर रहे हैं। इसी वजह से हम बीमार हैं। तो हमें अपने आहार को पौष्टिक बनाना पड़ेगा, दिनचर्या को संतुलित बनाना पड़ेगा। अब डायबिटीज के बारे में दो गलत फहमियां बहुत बड़ी हैं, उन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। हम कहते हैं डायबिटीज जेनेटिक डिजीज है। अब आप बताइए कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है? डायबिटीज जेनेटिक डिजीज है। मतलब लीनियज में चल रही है, एक को हुई, उसके बाद दादे को हुई, पिता को हुई, बच्चे को हुई, उसके बच्चे को हुई, उसके बच्चे को हुई, जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, और डायबिटीज महामारी है, 60 साल की उम्र के बाद हर तीसरे आदमी को डायबिटीज है, और फॉर एवरी वन डायबिटिक, हर के लिए एक दूसरा है जिसको प्री डायबिटीज है, तो 100 में से 60 लोगों को या तो डायबिटीज है या डायबिटीज के इतने आसार और लक्षण हैं कि उनको डायबिटीज होने वाली है। अब आज से, आप ही ने खुद ने बोला मुझे कि आज से 40-50 साल पहले डायबिटीज तो बहुत ही कम होती थी, 5% से कम, चाइना में तो 1% भी नहीं थी। आज चाइना में इतनी डायबिटीज है जितनी अपने हिंदुस्तान में है। क्या कर रहे हैं वो कभी चीनी खाते नहीं थे, वो पश्चिमी खाने पे आ गए। हमने क्या किया, सिंथेटिक आहार, कृत्रिम आहार, उस पे आ गए हम लोग। इस वजह से ये महामारी मोटापे की और डायबिटीज की बढ़ गई, उसके साथ फिर हार्ट डिजीज भी आ गई, हार्ट अटैक भी आ गए, ब्लड प्रेशर भी आ गए। ये सब साथ की बीमारियां हैं, ये सब भोजन और दिनचर्या की बीमारियां हैं। लगता है आपको ये ठीक है? लगता है ठीक है ना? अच्छा, तो अब पहले गलत फहमियां देखें क्या है कि डायबिटीज जेनेटिक डिजीज है। मुझे आप ही बताइए, खुद ही ने आप मुझे कहा कि आज से 50 साल पहले बहुत कम थी और आज अचानक इतनी बड़ी महामारी फैल गई 50 साल में, तो आपके कौन से बाप दादा को डायबिटीज थी या मोटापा था? तो ये काहे की बीमारी है? ये हमारी प्रॉब्लम है, फैमिलियल डिजीज हो गई है, फैमिलीज की दिनचर्या और भोजन चेंज हो गया है। हमने आहार अपना सिंथेटिक कृत्रिम बना दिया, आटा भी नकली बना दिया है, चीनी बहुत खा रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है। जो औद्योगिक क्रांति आई हमारी, उसमें मिडिल क्लास में बहुत लोग बढ़ गए, लोगों के पास पैसे आए तो सीधे कहां गए वो, मिठाइयों में, गलत खानों में। और हमने जो कृत्रिम आहार, नकली खाना जो है, जो पैकेट्स में है, वो खाना शुरू कर दिया। अब हमें अपने खाने का स्वाद बढ़ाना है तो हम उसमें क्या डालते हैं? ज्यादा से ज्यादा स्वाद किस चीजों से आता है? ऑयल, ऑयल, फैट, शुगर, फैट, शुगर एंड सॉल्ट, तीन चीजें हैं ना जिससे सारा स्वाद है, हमारी जीवा उसी पे रुकी हुई है। सॉल्ट, फैट एंड शुगर, नमक, चीनी और तेल, घी। ठीक है, तो मैं कहती हूं कि तेल घी में कोई बुराई नहीं, क्योंकि तेल घी को पचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है, पर हमारा तेल घी बदल गया इसलिए प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तेल हमारा क्या हो गया, रिफाइंड हो गया। पहले शुरू शुरू में तो डालडा था, पर सारे विश्व में डालडा को हटा दिया गया ट्रांसफैट करके, तो अब ऑयल्स रिफाइंड हो गए, जैसे शेल्फ पे सालों के साल पड़े रहे, बिगड़े ना, पर हमारे शरीर को आदत नहीं, उसको पता नहीं ये रिफाइंड ऑयल क्या होता है, इसलिए बीमारियां होती हैं। पर अगर हम असली घी और तेल खाएं, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, ये सब चीज खाएं, तो हमें डायबिटीज कम होगी। पर आपने अलग सुना होगा, ये इसलिए हुआ कि 1970 में पश्चिम की साइंस ने, अमेरिका और यूरोप की साइंस ने एक चीज निकाली, उसका नाम था लिपिड थ्योरी। लिपिड थ्योरी मीन्स फैट थ्योरी। वो क्या हुआ कि जब 1970 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के पास खूब पैसा आया, औद्योगिक क्रांति आई, खूब पैसा आया उनके पास, तो जब भी लोगों के पास पैसा आता है तो थोड़ा खाने पीने में ज्यादती कर देते हैं। तो उन्होंने देखा कि 1970 में लोगों को बहुत हार्ट अटैक आ रही हैं। जब हार्ट अटैक आ रहे हैं देखे उन्होंने, तो उन्होंने उनका ब्लड सैंपल निकाल के देखा, तो देखा बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत ज्यादा ये सब चीजें हैं। तो आप क्या सोचेंगे, जब खून में बहुत ज्यादा फैट आ रहा है तो आप कह देंगे फैट ज्यादा खा रहा है इसलिए फैट आ रहा है, पर वो फैट फैट खाने से ना आ रहा था, वो शुगर से आ रहा था। लोग मीठा बहुत खाना शुरू कर दिया, खूब केक पेस्ट्रीज मिठाइयां ये सब चीजें शुरू हो गई। जब भी पैसा आता है तो हम एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, हम मिठाई थोड़ी बांट रहे हैं, हम तो बीमारी बांट रहे हैं, उनको बीमारियां ही बांट देते हैं सबको। तो ये सारा जो फैट है शुगर है, मैं अपने हस्बैंड का एक किस्सा बताऊंगी तो आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगी। हमारे पति देव को मीठा खाने का बहुत शौक था, उनकी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती थी, हमारी सास बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, आज दिन समोसे एक दिन कचौड़ियां, मैदे के खूब सारे माल, उसके साथ मिठाइयां। हमारे हस्बैंड जब 50 साल की उम्र में अपना ब्लड टेस्टिंग कराने गए तो उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल इतना हाई, ट्राइग्लिसराइड्स खूब हाई, ये वो सब। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि आप फैट ज्यादा खा रहे हो, कम कर दो। मेरे को शक पड़ा, मैंने कहा इतना तो हम फैट खाते नहीं है, तो आप ये रहने दो, अभी मैं भी तो वही खाना खा रही हूँ लेकिन मैं आपके जैसे मीठा नहीं खाती, इतना जो इतने व्यंजन बन रहे हैं वो नहीं खा रही, मैं पतली दुबली हूँ, मेरा तो ब्लड शुगर कुछ भी नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप चीनी ज्यादा खा रहे हो, तो आप थोड़ी चीनी कर दो कम। तो हमने उनकी चीनी कर दी बंद, 3 महीने तक उनके व्यंजन बंद करवा दिए, तले हुए समोसे कचौड़ियां पाव वगैरह सब बंद करवा दिए और शुगर बंद करवा दी। फिर भेजा उनको ब्लड टेस्टिंग के लिए, आप विश्वास न करें उनका कोलेस्ट्रॉल 260 था, वो 3 महीने के अंदर 160 आ गया। यही आज की साइंस ने हमने देखा है कि जितना भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, ये फैट की वजह से नहीं है, ये शुगर की वजह से है, क्योंकि हमारी इंसुलिन एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देती है और वो फैट बुरा फैट है, वो खराब में खराब फैट जो है वो हमारी इंसुलिन बना देती है। तो खराब फैट जो है बाहर से नहीं आता है, अगर हम बाहर का अच्छा हेल्दी फैट खाएंगे तो उससे हमारे को बीमारी ना होगी, पर अगर शुगर अंदर ज्यादा है तो इंसुलिन जो है उसको खराब फैट में बदल देती है, उसी से सारी बीमारियां आती हैं, इसका ज्ञान हमें आज आया। पर एक चीज हिंदुस्तान में गड़बड़ ये हो गई कि हमारे डाइटिशियंस ने अभी तक यही समझा कि हमारे मोटापा डायबिटीज वगैरह जो है वो ज्यादा फैट खाने की वजह से हैं। वहां पे तो पश्चिमी सभ्यता में हमें हर जगह से बताया जाता है फैट थ्योरी इज रॉन्ग, फैट थ्योरी इज रॉन्ग, बंद करो, वापस फैट खाना शुरू करो। वो लोग तो डबल रोटी अब फैट के साथ मटर के साथ ही खा रहे हैं, अच्छी तरह से घी तेल खा रहे हैं। दुनिया के सबसे पतली कौम फ्रेंच लोग हैं, उन्होंने तो सुना ही नहीं उनकी फैट थ्योरी, उन्होंने कहा हम तो सब पतले हैं, हम तो बटर खाते ही रहेंगे। आप अगर फ्रांस में जाएंगे और कुछ खाना ऑर्डर करेंगे तो खाना तो इतना छोटा सा होगा, प्लेट में सारा बटर भरा होगा और वो दबा के खा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता, पर वो नाश्ता नहीं करते सुबह को। हमारा को नाश्ता ने बड़ा परेशान किया है, हम बड़े से बड़े नाश्ते कर देते हैं। हमारे को कहा जाता है ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, कितने लोगों ने सुना है, हाथ उठा लो, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं ये देती हूं कि आपकी सपोज घर के फैमिली मेंबर की हार्ट सर्जरी हो रही है और पेट की बड़ी सर्जरी हो रही है, कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, और आप अपने सर्जन को कह दो ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, कह दो उसको ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, अगर उसका पेट पूरा भरपूर है तो उसके शरीर का सारा खून मस्तिष्क कहां गया, पेट में गया खाना पचाने के लिए। उसके हाथ को आप चाकू देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा बाएं या दाएं, उसको तो बिल्कुल सुस्ती आने लग जाएगी। जब भी आप भारी खाना खाते हैं तो क्या होता है, नींद आती है। तो भारी खाना खाने से अगर आप ब्रेकफास्ट जो सुबह का वक्त है जब हम ज्यादा से ज्यादा काम करने की शक्ति होती है, दिमाग ज्यादा लगाने पड़ते हैं, उसके टाइम में आपने भरपूर पेट में इतना बड़ा खाना खाया तो फिर आप काम कैसे करेंगे। ये ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग को भूल जाइए। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग से क्या हो जाता है, सुबह सुबह को आपके शरीर में इतनी शुगर आती है तो उसके बाद शुगर जितनी ज्यादा इतनी इंसुलिन ज्यादा आई, इंसुलिन ज्यादा आई तो शुगर एकदम नीचे गिर जाती है जमीन पे, जब नीचे गिरती है तो आपको भूख बहुत लगती है, शरीर में जितनी इंसुलिन उतनी भूख ज्यादा, उतना खाना ज्यादा। तो जितना सुबह को आप मीठा खाएंगे, जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही प्रॉब्लम, पर उसकी जगह पे चीनी थोड़ी कम, घी तेल बराबर मात्रा में खाएंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। आप याद करेंगे हमारी दादी नानी कहती थी कि अच्छी तरह से घी वगैरह खा के जा, 10 घंटे भूख नहीं लगेगी। सच है कि झूठ है? क्या होता है घी खाने से, क्या होता है अच्छा तेल खाने से, सरसों का तेल खाइए, कोकोनट ऑयल खाइए, क्या होता है उससे, पेट भरा रहता है 8-10 घंटे, क्योंकि एक हार्मोन सिक्रीट होती है स्टमक से, इसको बोलते हैं एंट्रोगेस्ट्रॉन, वो पेट भरे रखती है, दिमाग को सिग्नल देती है पेट भरा है अभी नहीं खाना है, और जो शुगर भी धीरे से ही अब्सॉर्ब होती है क्योंकि पेट खाली नहीं हो रहा, चल रहा है वैसे ही। तो हमारे जो पुराने जमाने में जो भी खाने के मामले में होशियारी थी, विजडम था, समझदारी थी, हमने उसे खो करके पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागे हैं। मैं 42 साल से अमेरिका में हूं, मैंने अपने घर का काम न कभी बिगाड़ा, हमेशा घर का बना ज्यादा से ज्यादा भोजन खाया, घी तेल को बंद ही नहीं किया, सब्जियां सारी सरसों के तेल में या कोकोनट ऑयल नारियल के तेल में बनाई, तिल का तेल खाया और उतने की उतना रहा, वेट कभी बढ़ाई नहीं। जितना मेरे शादी के वक्त था उससे सिर्फ 3 पाउंड ज्यादा है वेट, तो वेट में चेंज नहीं आया। हमारे हस्बैंड जो की तबियत बिगड़ गई थी वो भी ठीक हो गई, और बच्चे भी सारे पतले दुबले हैं और बहुत एनर्जी है। तो अगर आप खाना ठीक करते हैं खाते हैं तो एनर्जी बहुत रहती है, बीमारियों से दूर रहते हैं। तो आप ये भूल जाइए कि घी तेल आपके लिए अच्छा नहीं है। पश्चिम सभ्यता ने लिपिड चोरी या फैट चोरी को फेंक दिया है, हम अभी तक चिपके हुए हैं उससे क्योंकि हमने अभी तक उस ज्ञान को यहाँ अडॉप्ट नहीं किया। जो भी चीज अमेरिका और पश्चिम में होती है उसे यहाँ आने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। मेरे को इस एरिया में बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि मैं सर्जरी क्लिनिक चलाया करती थी, उसमें कई डायबिटीज के पेशेंट्स और मोटापे पेशेंट्स आते थे। मैं उनसे सिर्फ 2 चीजें बंद करवाती थी क्योंकि अगर शुगर का लेवल ठीक नहीं हो तो सर्जरी में रिकवरी में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं शुगर कंट्रोल हो। तो मैंने अपने मरीजों को एक ही गुड़ दिया था, आप मीठा कितना खाते हो, मीठा का मतलब मीठा पानी कितना पीते हो। हमें क्या कहते हैं, आपको जलपान पे बुलाया है, जलपान, मैंने कहा तो जलपान कराइए, ये है जलपान। हम लोगों को क्या पिलाते हैं, जूस पिला दो। आज मैं गई तो उन्होंने 2 गिलास जूस निकाल के रख दिए, तो मैंने कहा जूस जलपान थोड़ी है, हमने पानी मांगा था, पानी कैसे दे देंगे, जूस देंगे, जूस बहुत हेल्दी होता है। मैंने कहा नहीं महाराज, जूस हेल्दी नहीं होता, जूस तो शुगर है, जो उसमें हेल्दी गूदा था फाइबर वो तो आपने कचरे में फेंक दिया। फिर आप जाते हैं बाजार के बॉक्स लेने के सीरियल के, इसके ऊपर लगता है हार्ट हेल्दी फाइबर, कितने लोग विश्वास करते हैं हार्ट हेल्दी फाइबर में। हम अपने बच्चों को खिलाते हैं सीरियल भर भर के, सीरियल कुछ भी नहीं है, चीनी का टुकड़ा है। अगर आपने सीरियल बनाते हुए देखा तो आप हैरान रह जाएंगे, सीरियल में सपोज कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स की लुगदी बनती है, उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कमरे में फेंका जाता है, टक 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 टक, वो सूखा होकर के नीचे गिरता है। जब आप उसको उठा के चखेंगे सूखे को तो आपको लगेगा ऐसे कि आप लकड़ी खा रहे हैं। फिर उसके ऊपर खूब दबा दब शुगर फैट और सॉल्ट डाला जाता है, तो उसके बाद उसका टेस्ट होता है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है हार्ट हेल्दी फाइबर, वेरी हेल्दी फॉर हार्ट, एब्सोल्युटली नॉट, वो सिर्फ मिठाई के बराबर ही है, पर उसमें फाइबर जो है वो सड़ा हुआ है, बिल्कुल बर्न हो चुका है, जल चुका है, वो उसको हार्ट हेल्दी फाइबर बोलते हैं। आपको जो एडवर्टीजमेंट बोलती है आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन असलियत जानने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी बीमारी का कारण देखना चाहें तो देखें कि हमारा आहार पौष्टिक है कि नहीं है, ये भी देखना हमारा फर्ज है। तो सबसे सीधे से सीधी चीज यही है, जो 50 साल पहले हमारे पूर्वज खा रहे थे वही खाते जाइए, उसी को फॉलो कीजिए। दादी नानी से पूछिए वो क्या खाते हैं, सबको पता है वो क्या खाते थे, कितनी बार खाते थे। दूसरा प्रॉब्लम दिनचर्या का है, खाना तो गलत हो गया हमारा, हमने घी तेल कर दिया बंद, चीनी कर दी ज्यादा, आटा हमारा बदल गया। अब पूर्वजों की तरफ जाइए तो कैसे वो लोग बाजरा भी खाते थे, ज्वार भी खाते थे, रागी भी खाते थे, ये भी खाते थे, और हर रोटी पे 1 चम्मच घी भी लगा के खाते थे। हमने भी सारी उम्र यही किया है, और उसके बाद 8 घंटे भूख नहीं लगती, आप कम से कम खाते हैं सारे दिन में। हमारी दादी नानी 60 साल की 50 साल की उम्र के बाद दिन में 2 बार खाती थी, और बच्चों को 3 बार खाते थे, और इन बिटवीन अगर चाहिए तो उनको स्नैक देते थे। आजकल स्नैक जो है, जो बीच में नाश्ता पानी किया जाता है, वो क्या होता है, हर खाने के बाद नाश्ता आ जाता है। जलपान के बदले हम विषपान करते हैं, विषपान का मतलब मीठा, जूस पीते हैं, कोका कोला, सोडा, जो भी मीठी चीज है। मैं कहती हूँ जलपान कीजिए, जलपान कीजिए, विषपान न कीजिए, क्योंकि जितनी भी शुगर खाएंगे वो विष के समान ही है आपके लिए, जितना आटा खाएंगे मैदा खाएंगे वो विष पानी ही है। हम बोलते हैं द टू बिगेस्ट पॉइजन इन अवर फूड इज मैदा, आटा और शुगर। इनसे बच के रहिए तो आपका काम बराबर। दूसरी चीज है हमारी दिनचर्या। हम एक दिन में कितनी बार खाते हैं, कितना सोते हैं, कितना जागते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि इस सारे ब्रह्मांड में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, आधुनिक इंसान, आधुनिक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने का ठौर ठिकाना नहीं है। ज्यादा देर तो बैठा ही रहता है, चलता फिरता नहीं है। हमारी मसल्स और मांसपेशियां 70% जितनी भी हम शुगर खा रहे हैं अपने खाने में उसको यूज करती हैं। अगर हम उसको चलाएंगे नहीं तो वो 70% शुगर कहां जाएगी, फैट में बन जाएगी, बैठे ही रहेंगे। सारा दिन हमारा काम कुर्सी का है। मैं कहती हूँ कुर्सी पे लगातार बैठने की जरूरत नहीं है। हर आधे एक घंटे के मैं कुर्सी पे खड़े होकर के 100 बार ऐसे ही कर लीजिए तो भी शरीर चलेगा। सुबह की दिनचर्या में उठ करके कुछ तो एक्सरसाइज कीजिए। एरोबिक एक्सरसाइज जरूरी न करें, वो इतना जरूरी नहीं है जितना रोज 8-10 हजार फीट चलने की, 8-10 हजार कदम चलने की है। 10 हजार कदम या 8 हजार कदम आपने रोज किए, इसका मतलब 3 या 4 माइल चल रहे हैं। सुबह को प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। ये हमारी संस्कृति ऐसे क्यों भूला? हम 42 साल से बाहर हैं, लेकिन प्राणायाम, योगा और रोज का चलना जरूरी होता है। हिप्पोक्रेटिस जो थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोला करते थे। वो 2000 साल पहले के क्या कह रहे, 3 चीजें मैं वो बोलूंगी आपके सामने। लेट फूड बी दाई मेडिसिन, दाई मेडिसिन बी दाई फूड। ये भोजन ही आपकी दवाई है, आपकी दवाई ही आपका भोजन है। 2000 साल पहले एलोपैथी। दूसरा बोला वॉकिंग इज मैन्स बेस्ट मेडिसिन, चलना ही इंसान की सबसे बड़ी दवाई है। तीसरा इफ वी गिव एवरीबॉडी एनफ फूड टू ईट, अगर हम सबको पूरा सारा खाना दें, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल, बहुत ज्यादा देंगे तो मोटा हो जाएगा, बहुत कम देंगे तो बुरा पतला ही ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमारे गरीब बच्चे हो जाते हैं, पूरा खाना नहीं मिलता, मैरास्मिक हो जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। एंड वी गिव देम, टेल देम टू डू एनफ एक्सरसाइज, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। तो अब आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपना इतना फायदा नहीं कर रहे हैं। अच्छा है जो जवान लोग करें, अपनी मसल्स बनाएं, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद आपको एरोबिक करने की कोई जरूरत नहीं है, 50 साल के बाद भी जरूरत नहीं है। 8-10 हजार रोज चलिए, क्योंकि जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं बड़ी उम्र में तो एक प्रॉब्लम हो जाता है, थक पहुंच जाते हैं। तो 1 घंटा तो कर लेते हैं भागा दौड़ी, उसके बाद सारा दिन ढीले ही पड़े रहते हैं। तो जो सुबह को फायदा हुआ वो शाम को गया गुल। और दूसरा क्या होता है, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की है तो क्या होता है, भूख लगती है, आप दुगना खा लेते हैं। हमारे हस्बैंड टेनिस खेलते हैं और जवान लोगों के साथ टेनिस खेल लेते हैं। जब आते हैं टेनिस खेल करके उस दिन दुगना ब्रेकफास्ट खा लेते हैं, 2 की जगह 4 पराठे खा लेते हैं, फिर सारा दिन काउच पे पड़े रहते हैं। मैं बहुत थक गया हूं, बहन का जो सुबह को कमाया था वो सारा गंवाया, क्या फायदा। पर शौक है इसलिए खेलते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। पर आम जनता जिसको एरोबिक करने की आदत नहीं है तो नहीं है जरूरी। योगा प्राणायाम कीजिए, अगर आप अच्छा योगा करते हैं तो आपकी मांसपेशियां बनी रहेंगी। प्राणायाम करेंगे तो हमारे सारे अंग ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हमारे लंग्स अच्छे रहेंगे, हार्ट अच्छे रहेंगे। तो दिनचर्या में क्या चाहिए, कितने घंटे खाना है, कितने घंटे नहीं खाना है। 1970 से पहले सारे विश्व में 3 खाने खाए जाते थे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। रात का खाना 7 से पहले 8 से पहले हो जाता था खत्म। अब हमारा औद्योगिक क्रांति के बाद रात का खाना 10, 11, 12 बजे चल रहा है। अगर आप 10 बजे खाना खाएंगे तो पेट भरा सो जाएंगे, पेट भरे सो जाएंगे तो वो खाना हजम नहीं होगा आपका, आपको डकारे, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि हमारा अनपचा हुआ खाना पेट में पड़ा रहता है। तो खाना खाना है तो जरूरी 8 बजे से पहले खाइए। मैं तो कहती हूँ जो डब्बे का तरीका है बॉम्बे जैसे शहरों में जहां खाना डब्बे में भेजा जाता है, तो सुबह का तो खाना खा के जाइए और डब्बा रात के खाने के लिए मंगाइए। 6 बजे खाना, 7 बजे खाना खा लीजिए उस डब्बे का, पर रात को 11 बजे आके खाना न खाइए, वो आपकी सेहत को खत्म कर देगा। आपको स्वास्थ्य न रहने देगा। तो ये जरूरी है आपके लिए कि रात का खाना 8 बजे के बाद न खाएं। तो अगर रात का खाना आप 8 बजे खा रहे हैं, सुबह को 8 या 9 बजे, तो ऑटोमेटिकली 12 घंटे का टाइम हो जाता है रात के खाने और सुबह के खाने में। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप खाना न खा रहे हैं तो इंसुलिन बहुत नीचे रहती है, आपको भूख नहीं लगती, आपके शरीर में फैट नहीं बनता। पर अगर आप बार बार खाते रहते हैं तो इंसुलिन बढ़ी रहती है और फैट की कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। यही हमारी बीमारी की जड़ है। तो डायबिटीज में और मोटापे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? संतुलित दिनचर्या और पौष्टिक आहार। अब पौष्टिक आहार में मैं जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। हमने किताब लिखी है और हम यहाँ पे भेजेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आप सब लोगों को, जिनको इंटरेस्ट है, उनको उसकी कॉपी मिले। मैंने मोटापे पे अलग किताब लिखी है आम जनता के लिए, वो उसमें मेडिकल लैंग्वेज नहीं है, मैंने सबसे पढ़वाई है, वो कहते हैं आम जनता को समझ में आती है, कईयों ने पढ़ी है, और डायबिटीज के लिए भी ऐसे लिखी है। उसमें सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, जैसे मोटापे से छुटकारा मिले और डायबिटीज से भी मिले। फिर भी मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है तो खाना 2 बार खाइए, लेकिन भर पेट खाइए, जितनी भी जरूरत है उतनी खाइए, लेकिन बार बार न खाइए, क्योंकि बार बार खाने से ही परेशानी होती है, उसी से इंसुलिन बढ़ती है, उसी से ही बीमारियां होती हैं। खाना पौष्टिक का मतलब आपके आहार में घी तेल जरूरी होना चाहिए 8 से 10 चम्मच, आपको कम से कम सब्जियां 4 या 5 कप के बराबर खानी है, आपको अपनी दालें तरह तरह की, एक दाल ना खाइए, मुझे मूंग दाल पसंद है मैं और नहीं खाता, आम लोग ऐसे कह देते हैं, हम कहते हैं नहीं, हर अनाज में अलग अलग अंश है, आप हर तरह के अंश खाइए, हर तरह की सब्जियां खाइए, दालें 1 या 2 न 4 या 5 हफ्ते के अंदर 8-10 दालें खा लीजिए, हर एक में से अलग अलग अंश मिलेगा और प्रोटीन जो है उसमें से आएगा। मैं सबको कहती हूँ कि इंसान जो है उसकी आंतड़ियां शाकाहारी हैं, उनके इंटेस्टाइन लंबे होते हैं, जो एनिमल्स शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी हैं, उनके इंटेस्टाइन बड़े छोटे होते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें से बनाया है, नेचर ने हमें से बनाया है कि अगर हम मांस खाते हैं तो हमारे आंतड़ियां छोटी होनी चाहिए, जैसे वो मांस सड़े ना, अंदर बाहर निकल जाए जल्दी से। पर हम जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, उनकी आंतड़ियां लंबी होती हैं, तो उनको शाकाहारी भोजन ही सबसे अच्छा होता है। अब मैं अपना आपको बताती हूँ एक्सपीरियंस कि मेरे माँ बाप ने मुझे मांसाहारी रेज किया था, तो जब मैंने 10 साल पहले ये सोचा कि मांसाहारी खाना अच्छा नहीं, क्योंकि आजकल के जो जानवर वो हेल्दी नहीं है, उसको कॉर्न खिलाया जाता है, घास नहीं खिलाई जाती, उसको बीमारियां बहुत है, उनको एंटीबायोटिक हार्मोन सब दे देती है, नहीं खाएंगे, हमने 10 साल पहले मांस खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो मैं हैरान हुई कि मेरा एनर्जी लेवल डबल हो गया। सब लोगों ने मुझे कहा तू तो बुढ़ी नहीं हो रही, जवान होती चली जा रही है। हमारी उम्र अभी करंटली 72 ईयर्स है, मैंने कभी दवाई नहीं खाई, मैंने कभी मल्टी वाइटामिन कैल्शियम वाइटामिन डी नहीं खाई। अभी आप मुझे कहेंगे भाग ले तो मैं 5 मील भाग लूंगी। तो ये इसलिए है कि खाना पौष्टिक है, प्राकृतिक है, खाना प्राकृतिक खाइए, न कि कृत्रिम खाना खाइए। मुझे एक बड़ी चीज अजीब लगती है, जब मैं हिंदुस्तान का, मुझे याद है जब मैंने छोड़ा था आज से 45 साल पहले, तो जब हम किरयाने की दुकान पर जाते थे तो किरयाने वाले की शक्ल नजर आती थी, ये दे 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 भैया, वो दे दे। अब मैं जाती हूँ किरयाने की दुकान पे बॉम्बे में, तो उसमें इतनी लड़ियां पोटैटो चिप्स की, चीटो पीटो सबकी लगी होती है, प्रसारण की, कि उसको ऐसे हटाना पड़ता है। भाई है कि नहीं है तू? हाँ हूँ। तो ये इतनी लड़ियां क्यों लटकाई हैं, तेरी शक्ल भी नहीं दिख रही मुझे। तो वो ये कहता है क्या करूं साहब, अभी लगाई हैं और आप देखना शाम तक दूसरी लगानी पड़ेंगी लड़ियां, लोग यही तो खा रहे हैं आजकल। मैंने कहा इसीलिए तो, मैंने कहा तूने तो हार्ट अटैक और डायबिटीज उनको प्लेट पे डाल के दे रहा है तू तो पैकेट में बंद करके, अरे तुझे भी पाप पड़ेगा। कहते तो रोटी रोजी कैसे खाऊं। सामने पास वाला है जिसके यहाँ रोज डबल रोटी आती है और पाव आते हैं। सुबह सुबह को मैंने देखा, जब मैं जाती हूँ गार्डन में चलने के लिए, तो यूं दीवार बन जाती है डबल रोटियों और पाव की। अभी दोपहर को गई नहीं कुछ लेने के लिए तो सारी खाली थी। मैंने कहा अरे सुबह को इतनी बड़ी पहाड़ मचाया था डबल रोटियों और पाव को, वो कहाँ चले गए? बोले अजी साहब वो तो गए हैं, दूसरी गाड़ी आ रही है भरने के लिए, शाम तक वो भी खत्म हो जाएंगे। अरे मैंने कहा कितनी चीनी खा ली सबने, एक पाव में 10 चम्मच 8 चम्मच शुगर और एक डबल रोटी में। हम अमेरिका में कहते हैं व्हाइटर द ब्रेड अर्लियर यूर डेड। और यहाँ पे धड़ाधड़ डबल रोटी खाई जा रही है। कहते हम तो व्हीट ब्रेड खा रहे हैं। हमने कहा महाराज व्हीट ब्रेड का भी हमने रेसिपी देख ली, आधा उसमें मैदा होता है आधा उसमें व्हीट होता है और ब्राउन कर देते हैं किससे, शुगर से। शुगर को जब कैरामलाइज करते हैं सूखा तो वो ब्राउन हो जाती है, वो डाल दिया जाता है, तो उससे क्या फूलती भी अच्छी है, उसका रंग भी आ जाता है अच्छा सा। तो आप ये खा रहे हैं व्हीट ब्रेड के बजाय मैदा ही खा रहे हैं, तो ये हमारा वहम है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी, उस कविता में आपको ये सब सार आ जाएगा। ये कविता मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर लिखते हैं, जब भी हम कोई किताब बनाते हैं तो उसके ऊपर कविता लिखते हैं। इस कविता का शीर्षक है मधुमेह के कारण और निवारण। मधुमेह के कारण और निवारण। भारत के हर परिवार में छाया है मधुमेह, बात सच्ची है। कारण है असंतुलित दिनचर्या और कृत्रिम आहार से अति स्नेह, यह भी सच है। चीनी की है भरमार और मैदे से भरा है भोजन, केक पेस्ट्री डबल रोटी क्या है, मैदे से भरा है भोजन। विदेशी खान पान से है लगाव, हम अपने बच्चों से कहते हैं बर्थडे मनाएंगे मैकडॉनल्ड में, इटालियन खाने चलेंगे चाइनीज खाने चलेंगे, वो खाना आपने कभी देखा है उसमें चीनी कितनी है, चीज कितना है, मैदा कितना है। हम अपने बच्चों को बीमारी की का कर्ज बोलते हैं जिसको, उसको बीमारी की सलाह दे रहे हैं, हो जाओ बीमार। तो जो हम जितना जी रहे हैं हमारे बच्चे उससे कम जिएंगे, ये ऑलरेडी मेडिकल साइंस ने बताया है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारे से कम जिएगी, क्योंकि वो गंदे से गंदा खाना खा रहे हैं और रद्दी से रद्दी जिंजीर में रहे हैं, सोने का उनको वक्त नहीं। अगर सोएंगे कम तो बढ़ जाएगा वजन, अगर निद्रा है कम, क्योंकि गहरी निद्रा का है हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध, अगर निद्रा है कम तो बढ़ जाएगा 10 किलो वजन, ये साइंस ने टेस्ट करके देख लिया है। अगर आप कम सोते हैं तो आप हमेशा मोटे रहेंगे, तो अपने सोने के ऊपर भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। एक मिनट, अभी आंसर बाद में करेंगे, ये कविता खत्म कर रहे हैं। चीनी की है भरमार और मैदे से भरा है भोजन, विदेशी खान पान से है लगाव और चलने फिरने पे है बंधन। टैंकर के नौकर से ग्लास मंगा लेते हैं पानी का, चल के अपना पानी भी भर के नहीं पी सकते। अब समस्या आपने समझ लीजिए, ली तो सुन लीजिए समाधान। प्राचीन और स्वदेशी परंपरा से, प्राचीन और स्वदेशी परंपरा से ही कीजिए भोजन और जलपान। जल पीजिए न कि विष पीजिए मीठा, फ्रूट खाइए न कि फ्रूट जूस पीजिए, फाइबर को न फेंकिए कचरे में। प्राकृतिक पदार्थ, शुद्ध तेल और घी से ही बनाइए भोजन। प्राकृतिक पदार्थ, नकली नहीं, प्राकृतिक पदार्थ, शुद्ध तेल और घी से ही बनाइए भोजन। परंतु याद रहे ये मंत्र, चीनी तथा अन्न पर रहे सदा नियंत्रण। ज्यादा अन्न खाना ज्यादा बीमारी पाना। मोटापे और मधुमेह का आपस में है भाईचारा, निवारण केवल संभव है नियमित भोजन और उपवास द्वारा। बार बार न खाइए, 12-14 घंटे का अंतर रखिए, अगर मोटे हैं तो 16 घंटे का अंतर रखिए रात के और सुबह के खाने में। एक चीज बड़ी अजब की हो जाती है, जब आपके रात के खाने या दिन के खाने में 16 घंटे का अंतर होता है तो पता है क्या हो जाता है, आपकी फूड क्रेविंग जिसको बोलते हैं ना, भूख बहुत बुरी भूख बंद हो जाती है, आपकी भूख लगती ही नहीं, पर सब जब सामने खाना आता है तो अच्छा लगता है, आप भरपूर खा सकते हैं, लेकिन आप खाने की तरफ भागते नहीं, खाना आपके पीछे भागता है। तो अगर आपको अपनी गलत भूख पे विजयी पाना है तो आपको अपने रात के खाने और सुबह के खाने के बीच में अंतर रखना है। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग नहीं खाना है, क्योंकि उसी से आप सुबह से ही सुस्त हो जाते हैं, सारा दिन काम नहीं कर सकते। ब्रेकफास्ट खानी है तो थोड़ी ही खाइए, उसमें शुगर ज्यादा ना हो, घी बेशक हो। अब जवाब पूछिए सवाल आप। हाँ, ये मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा आप, मैंने ये वाला ऐड नहीं किया, पर मेरी जब स्लाइड्स आती है ना, हाँ तो आपने बहुत, हाँ एग्जैक्टली, अगर मेरी स्लाइड्स होती तो मैं ऐड कर देती। हमारे मोटापे की तीन कारण है, मैं सबसे पहले ये चीज बताती हूँ कि हमारे हेल्थ का जो प्लेटफॉर्म है वो 3 पिलर्स पे है। मुझे बताया गया कि भोजन का टाइम है, मेरे को बताया गया कि 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखना, तो मैंने इसे रोक लिया है। अच्छा, मैं एक चीज बताती हूँ, मैंने क्यों नहीं बताया उसका मैं कारण बताऊंगी। मैं जब भी पहले अपने भाषण शुरू करती हूँ तो मैं कहती हूँ, आपको पता है कि ये भाषण मैं ब्रह्म कुमारी के प्लेटफॉर्म पे क्यों दे रही हूँ? क्योंकि स्वास्थ्य का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो 3 पिलर्स पे बना है, 3 खंभों पे पड़ा है। एक खंभा सिर्फ फिजिकल है, स्वास्थ्य बॉडी का, पर हमारे स्वास्थ्य के 2 बड़े पिलर्स हैं, माइंड एंड स्पिरिट। तो मैं एकदम मुड़ के कहती हूँ, माइंड एंड स्पिरिट मैं न पढ़ाऊंगी, माइंड एंड स्पिरिट बीके सिस्टर्स पढ़ाएंगी, ये उनका काम है। पर एक चीज समझ लीजिए, सबसे बड़े मोटापे और बीमारी का कारण है चिंता, उसका कारण है मन की अशांति। आपको मन की शांति में नींद नहीं आएगी, अगर नींद नहीं आएगी तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो आपको डायबिटीज भी होगी, मोटापा भी होगा और ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी खूब बढ़ेगा दबादब। तो हमने क्या किया कि हम सिर्फ आपको अपना फिजिकल बॉडी का प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन जो 2 पिलर्स हैं उनके ऑलरेडी ही माहिर हैं। तो मैं हमेशा बीके सिस्टर्स की तरफ कहती हूँ, मैं सिर्फ एक ही पिलर पढ़ा रही हूँ, 2 पिलर्स जिसके ऊपर हेल्थ खड़ी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान आप देंगे, मन को शांत कैसे करना है उसका ज्ञान आप देंगे, सोल कॉन्शियसनेस ये आप देंगे, क्योंकि इसके बिना स्वास्थ्य पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको होलिस्टिक हेल्थ की डेफिनेशन दूंगी, क्योंकि आपने ये मांग करी है, मुझे बड़ी खुशी है। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब, और ये WHO की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, होलिस्टिक हेल्थ इज होलनेस ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, इट इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम पश्चिम में भी फॉलो करते हैं। 50% ऑफ बीमारियां, आधे पे आधी बीमारियों का कारण, बीमारी का आधा कारण, अगर आपको बीमारी है तो आप पहले देखिए मानसिक शांति है कि नहीं, स्पिरिचुअल ज्ञान है कि नहीं। जिनको ये दोनों चीज नहीं वो बीमारी से न बचेंगे। आपने देखा होगा कि कई लोग कैंसर से बच गए, क्योंकि उनको बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग थी, उनकी मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो बच जाते हैं। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, जो रक्षक सिस्टम है, वो पॉजिटिविटी से बढ़ता है, तभी आपको बीमारी को हटाने की पूरी शक्ति रहती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म, आशावादी रहना, निराशावादी न रहना, ये बहुत जरूरी है बीमारी के लिए। इसीलिए आजकल जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं या लंबे अरसे की बीमारी, तो उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी जाती है। मुझे हंसी आती है कई बार, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर करके तो खत्म ही हो गए, साइकियाट्रिस्ट ने बड़े पैसे बनाए, लेकिन मरीज को ज्यादा फायदा नहीं होता, वो तो दवाई दे देते हैं। हम तो उनको कहते हैं इनको आध्यात्मिक ज्ञान दे दो और मानसिक शक्ति बढ़ाओ तो वो ठीक हो जाएंगे। बुरे से बुरी बीमारी आप काट सकते हैं अगर आप आशावादी हैं, निराशावादी नहीं। दूसरी ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ज्ञान है तो आप किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्ञान से निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। पर अब आपको अज्ञान है, आपको किसी बीमारी का कारण पता नहीं, तो पावरलेस हो जाते हैं, डॉक्टरों पे विश्वास नहीं रहता, आप क्या हो जाते हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं। और बाबा ने कितनी बार आज की मुरली में भी बोल दिया कि संशय बुद्धि विनश्यति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। ये बीमारी में बहुत जरूरी है, आपको बीमारी का ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टरों के पास ऐसे मत पहुंचिए, ज्ञान लेकर के पहुंचिए। वो जब नुस्खा लिखता है तो उसको बताना चाहिए कि ये दवा किस वजह से दे रहा हूँ, कि ये डायबिटीज की दवा आपकी डायबिटीज नहीं निकालेगी। आपकी डायबिटीज निकालने के लिए आपको अपने भोजन में पौष्टिक आहार लाना है और दिनचर्या में संतुलित लाना है। सारा दिन खाने से आपकी शुगर बढ़ेगी, गलत खाना खाने से शुगर बढ़ेगी, डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन डायबिटीज की दवा का आप पूरा निकाल कर सकते हैं अगर अपने भोजन में संतुलित लाएं, पौष्टिक आहार खाएं, तो धीरे धीरे करके आपकी डायबिटीज की दवा उड़ जाएगी। नॉर्थ अमेरिका में एक डॉक्टर हैं जेसन फंग कनाडा के, जिन्होंने हजारों लोगों की डायबिटीज इस तरीके से हटा दी। यहाँ पे क्या होता है कि डायबिटीज की दवा शुरू होती है तो इमीडिएटली मरीज को बोला जाता है खाना बुरी बात, कई बार खाना, अच्छी तरह से खाना, खाने में कुछ भी बचाव न करना, बार बार खाना, मुझे डायबिटीज की दवा खानी है इसीलिए मुझे खाना खाना है। ये सोच गलत है। अगर आपको डायबिटीज दवा के बाद ब्लड शुगर गिरता है, इसका मतलब आपकी दवा का डोज गिरना है, न कि आपको बिस्कुट खाने और शुगर का जूस पीना है या फ्रूट जूस पीना है, ये गलत है। अगर आपका ब्लड शुगर गिरता है तो आपका इंसुलिन गिरना चाहिए, आपकी दवाई गिरनी चाहिए। इसी तरीके से आजकल अमेरिका में डायबिटीज का मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ हिंदुस्तान में डायबिटीज में जब भी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर गिर रही है तो क्या होता है, मरीज को बोलते हैं बिस्कुट जेब में रखना, ये कर देना, वो कर देना, खा जाना। ये नहीं कि एक बार भी मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो डॉक्टर को इमीडिएटली इसकी दवाई कम करनी है, और करते 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 जैसे ही वो अपना भोजन पौष्टिक बनाएगा, आहार संतुलित बनाएगा, तो उसकी दवाई की नीड कम होती जाएगी, जरूरत कम होती जाएगी होती जाएगी, अचानक आपका इंसुलिन का डोज एकदम गुम हो जाएगा। हमने अपने पिताजी के लिए ऐसे किया, वो 50 यूनिट इंसुलिन पे मेरे यहाँ रहने के लिए आए, मैंने उनका इंसुलिन 2 महीने के अंदर 10 यूनिट कर दिया, और अगर मेरे साथ वो 2 महीने और टिकते तो मैं उनको इंसुलिन से फ्री कर देती। तो इतना ज्यादा पावर है हमारे खाने भोजन के पौष्टिक होने में और हमारी दिनचर्या संतुलित होने में। तो बार बार खाना ही सबसे बड़ी मुसीबत है, और गलत खाना ही सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। तो आप डायबिटीज का और मोटापे का बिल्कुल निवारण कर सकते हैं अगर आहार पौष्टिक हो और दिनचर्या संतुलित हो। गुड़ का किसी ने सवाल किया था, गुड़ का, गुड़ जो है वो 90% शुगर है, हनी जो है 20-25%। अगर 1 चम्मच आपने हनी का खाया तो समझ लो आपने 5 चम्मच चीनी के खा लिए, ज्यादा ही, 10 के बराबर, ठीक है। जो गुड़ है वो 90% है, अगर 1 चम्मच चीनी खाई तो उसका समझ लो 3/4 है वो, तो चीनी का मात्रा उसमें भी है। पर गुड़ में कई बार एक एडवांटेज हो जाती है, उसमें आयरन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, ये भी होते हैं। रिफाइंड शुगर जो है उससे थोड़ा धीरे एब्जॉर्ब होता है। तो मैं ऐसी कहती हूँ लोगों को, मीठा खाने का बहुत शौक है, डायबिटिक हो तो तिल के लड्डू खा लिया करना, क्योंकि तिल में कैल्शियम बहुत होता है और तिल में प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है, तो गुड़ का एब्जॉर्प्शन बड़ा स्लो होता है। अब जैसे मैं लोगों से बोला कि आपको टोली मिलती है तो आप टोली लेकर के इमीडिएटली मुंह में डाल के खा लेते हैं, उसी टाइम अपनी शुगर बढ़ा देते हैं, नहीं, मैं तो अपनी टोली को अपने हाथ में सिर पे लगा करके रुमाल में लपेट करके अपने पर्स में डाल देती हूँ। जब खाने बैठती हूँ तब टोली को साइड में रखती हूँ, अपना खाना खाती हूँ, फिर टोली खा लेती हूँ, तो उससे क्या है, मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए इसका, टोली का, तो आपको हैरान होगी कि वो शुगर आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि आपने इसको खाने के साथ खाया है। डायबिटीज का मतलब ये नहीं कि चावल मत खाओ, मैं कहती हूँ चावल खाने का अंदाज ठीक करो, क्योंकि चावल हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जब हमें डायरिया होता है, अपसेट हो जाता है पेट बहुत ज्यादा, तो हम क्या खाते हैं, खिचड़ी, खिचड़ी खाते हैं, जिससे कि हमारा पेट ठीक हो जाए, पेट शांत हो जाए। तो चावल का हीलिंग पावर बहुत होता है, पर हमने 2 गलतियां करी हैं। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज है, 20-21% है, क्योंकि वो लोग जो है इडली डोसा सांभर तो हमेशा खाते ही रहते थे, इडलियां और डोसे, उसमें सब चावल है, लेकिन उनको तब इतनी डायबिटीज नहीं थी 40-50 से पहले, क्योंकि वो लोग कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा खा रहे थे, उन्होंने कोकोनट ऑयल को कम कर दिया, तो वही चावल उनके दुश्मन बन गए। पर अगर आप चावल में थोड़ा घी डालेंगे तो चावल धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहती हूँ, क्या आप चावल प्लेट में डाल करके फिर दाल डालते हैं कि दाल के कटोरे में चावल डालते हैं, दोनों में क्या फर्क है? तो क्या है, कम से कम चावल डालेंगे, स्वाद भी चावल का आएगा। तो हमने लास्ट ईयर ये स्लोगन शुरू किया था, दाल चावल में न डालिए, डालिए दाल में चावल, सारा पासा पलट जाएगा आपका और आप चावल खा सकते हैं। 2 चम्मच चावल से पूरा स्वाद आएगा, दाल का कटोरा जो है इतना प्रोटीन है कि चावल का एब्जॉर्प्शन धीरे कर देगा वो। तो खाना क्या है, समझदारी से खाना है, ये नहीं कि सब कुछ बिल्कुल नहीं खाना है, ये नहीं कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, पर जरूरत से ज्यादा मीठा नहीं खाना। अगर गुलाब जामुन है तो आधा खा लीजिए अगर आपको डायबिटीज है तो, पर खाने के साथ खाइए, खड़े खड़े मुंह में न दबाइए, रात के खाने के 1 घंटे के बाद न खा के सो जाइए, उसमें प्रॉब्लम है। दाल से गैस बनता है तो आप उसके तो कई तरीके हैं कि उसमें अदरक भी खूब डाली जाए, और उसमें क्या डालते हैं वो जो एस्फेटिडा, जिसको हींग डाल दी जाती है। तो अगर जिसको दाल से गैस की बहुत ज्यादा बीमारी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है सब्जियां और दाल का कॉम्बिनेशन खाएंगे तो आपको कम होगा, क्योंकि जो फाइबर है वो गैस को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब आप दाल ज्यादा खा रहे हैं और सब्जियां कम खा रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन ठीक रखिए। हाँ, मोटे के लोगों को इसलिए ज्यादा भूख लगता है क्योंकि उनका इंसुलिन लेवल बहुत हाई होता है, ज्यादा इंसुलिन जो है उसकी वजह से होता है। तो उनको भूख काटने का सबसे तरीका है कि उनको रात के खाने और सुबह के खाने में कम से कम 15 या 16 घंटे का अंतर चाहिए तो भूख मर जाएगी। एक बार 16 घंटे पे पहुंचेंगे भूख मर जाएगी। और लोग कहते हैं तो फिर सुबह को हमें भूख लगती है, सिर्फ तीन हफ्ते में आप भूख पे विजयी बन जाएंगे। भूख पे विजयी बन जाएंगे आप मोटे हैं तो ट्राई करके देखिए, जैसे ही आपका फास्टिंग पीरियड 16 घंटे होगा आपकी भूख गायब हो जाएगी। हाँ, तो यही तो नेचर ने बनाया है कि रात के टाइम में आपको जो फिक्स डिपॉजिट में फैट पड़ा है वो थोड़ा निकलना चाहिए बाहर, ठीक है। तो जैसे आपके लिवर से फैट खत्म हो जाएगा तो आपको बार बार की भूख की शक्ति कम हो जाएगी। शुरू में आपको मनोबल संस्कार की जरूरत पड़ेगी, शुरू में पड़ेगी, पर उसको हटाने के लिए हमने किताब में 8-10 तरह के कैलोरी फ्री ड्रिंक्स लिखे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि स्पाइस टी, इंडियन स्पाइस टी। आप तो ग्रीन टी पीने जाते हैं, आपको डाइटिशियन कहता है 4 कप ग्रीन टी के पीजिए। मैं कह रही हूं कि ग्रीन टी में क्या है हमें क्या पता, उसने किससे बनाई है ग्रीन टी, सारी दुनिया के लोग ग्रीन टी पी रहे हैं, इसका मतलब असली है कि नकली हमें क्या पता। पर हमें ये पता है कि अब हम अपनी चाय बनाएंगे सौंफ, इलायची, लविंग, थोड़ी काली मिर्च और सिनेमन जो होती है, सिनेमन को क्या बोलते हैं, दालचीनी जो होती है, दालचीनी से आपको पता है शुगर गिरती है नीचे, सौंफ से आपका पेट ठीक होता है। हम रोज सुबह को 2 कप वो चाय पी जाते हैं, भूख न गुम हो जाए उससे आपकी तो मेरा नाम बदल देना, 2 कप चाय पी के दीजिए। उसके साथ आप या तो थोड़ा सा मूंगफली, रात को भिगोई हुई मूंगफली और रात के जो अंकुर होते हैं बने हुए अंकुर, थोड़े से वो अंकुर खा लीजिए, उससे इंसुलिन रिलीज नहीं होती। तो हम लोगों को एडवाइस करते हैं आपको भूख लग रही है तो थोड़े से नट्स या तो बादाम और अखरोट रात को भिगोइए या मूंगफली भिगोइए, जैसे आपको यहां मिल रहे हैं ज्ञान सरोवर में। पिछले साल हमने रिक्वेस्ट किए थे कि अंकुर बनाइए और लोगों को दीजिए, सुबह सुबह को उनकी इंसुलिन नहीं बढ़ेगी, उनकी भूख नहीं बढ़ेगी, सारा दिन भूखे नहीं भागते फिरेंगे खाने के लिए, क्योंकि आपने सुबह को ये दे दिया, उनका इंसुलिन गिरा दिया आपने उसका। पर उसकी जगह पे आप सुबह सुबह को 2 परांठे दवा लेंगे तो मुश्किल काम है। तो हम कटोरी भर के तो अंकुर और मूंगफली खा लेते हैं, उसके बाद परांठा खाते ही नहीं, और उसके साथ में कुछ और होता है, जैसे आज आपको मिला था भोग में जो सीरा मिला था 1 चम्मच खा लिया, वो उसके साथ आलू की सब्जी ऐसी खा ली, रोटी खाई तो आधी रोटी खा ली, लेकिन कटोरी भर के अंकुर खा लिया और दही भी खा लिया उसके साथ। तो आप बताओ, मैं अभी तक उसी पे चल रही हूं, क्या मेरे को आपको लगा मैं ढीली पड़ी हूं, कुछ भी नहीं खाया, 1 कप चाय पी है उसके बाद, इतना पेट भरा रहता है, नहीं खाया दोपहर का खाना बिल्कुल भी, मुंह में भी नहीं डाला। हम दिन में 2 बार ही खाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ज्यादा टाइम उपवास करने से गैस खत्म हो जाती है, गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोगों उपवास से डरते हैं। अब आप याद कीजिए, 50 साल पहले हमें पता था कि अगर हर सोमवार को हम उपवास नहीं रखते तो पिटाई करवा के हमारे से उपवास रखाया जाता था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा सोमवार का 1 काणा रखो, 1 बार खाओ, जैसे सारी दुनिया को खाना मिले। हमारे गरीब लोग उस टाइम में गेहूं नहीं थी, PL-450 आता था अमेरिका से, तो उन्होंने कह दिया अगर हर इंसान 1 बार खाना न खाए तो सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारी मां ने कह दिया, शास्त्री जी ने कहा है सोमवार का खाना बंद, सिर्फ रात को मिलेगा 1 बार। और मैंने कहा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर पूर्णमासी जन्माष्टमी हम कितने उपवास रखते थे। इसलिए मेरा स्लोगन है, चीनी कम से कम, अन्न कम, उपवास पे रहे सदा विश्वास। जब हम उपवास कर रहे थे 50 साल पहले, हमारे दादा नानी, हम हर त्योहार पे उपवास करते थे, अब हम हर त्योहार पे व्यंजन खाते हैं, उपवास तो करते ही नहीं है। उपवास करना सीखिए वापस, इतनी अच्छी तंदुरुस्ती होगी। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, किसने पूछा है, फ्रूट का सवाल। फ्रूट फ्रक्टोज शुगर होती है, उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। फ्रूट पर सुबह को खाइए, क्योंकि फ्रूट का जो मेटाबॉलिज्म अलग होता है। फ्रूट जो है वो सीधा लिवर में जाता है, वहां पे फ्री फैटी एसिड बनते हैं, उसमें से वो कीटोन बॉडीज बनाता है जो हमारी दिमाग की ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल की ऊर्जा के लिए। आपने सुना होगा कि फ्रूट खाने से दिमाग की शक्ति भी बढ़ती है, दिल की शक्ति भी बढ़ती है, ये सच है। अगर आप फ्रूट दिन को खा रहे हैं, अगर आप फ्रूट रात को डिजर्ट बना के खा रहे हैं तो वो फ्री फैटी एसिड वहीं पड़ा रहेगा, उसको चलने से ही यूज करना है। तो जब आप फ्रूट खा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे तक एक्टिव रहिए, और अगर फ्रूट बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं। फ्रूट 2 कप से ज्यादा खाना नहीं चाहिए, अगर डायबिटिक है तो 1 और फ्रूट भी एक तरह का न खाएं, फ्रूट की तरह तरह के दो या तीन तरह के खाएं, क्योंकि हर फ्रूट में अलग अलग तरह की शक्ति होती है। तो हम एक चीज बोलते हैं इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी, हर चीज के तरीके खाइए, दालें खाई तो 10 तरह की, सब्जियां खाए तो 10 तरह की एक हफ्ते में, और फ्रूट खाएं तो 10 तरह के एक हफ्ते में, जैसे हर फ्रूट का अंश मिले आपको। सीड्स और नट्स, अगर आप सैलेड बनाते हैं तो उसमें मैं एक सैलेड बनाती हूँ त्रिमूर्ति, अगर आप सांता क्रूज सेंटर में जाएंगे बॉम्बे में, मैं पिछली बार उनको त्रिमूर्ति सैलेड बनाना सिखा के गई थी, सब लोगों ने 9-10 किलो वेट लूज किया, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट की जगह त्रिमूर्ति सैलेड खाना शुरू कर दिया। त्रिमूर्ति सैलेड में क्या होता है, तीन तरह की सब्जियां, गाजर मूली टमाटर वगैरह जो भी आए दिमाग में वो डाल दिया, तीन तरह के फ्रूट डाल दिए, थोड़े थोड़े जितना भी खा सकते हैं आप उतना, उसमें तीन तरह के सीड्स मतलब सेसमी सीड्स भी डाल दिए, सनफ्लावर सीड्स डाल दिए, वो सीड्स डाल दिए, और मेथी का स्प्राउट डाल दिया, वो भी सीड है। उसके बाद तीन तरह के नट्स डालिए, मूंगफली डालिए, बादाम डालिए, थोड़े से अखरोट डाल दीजिए, उसके बाद तीन तरह के स्प्राउट्स जैसे आपको यहाँ मिल रहे हैं, तीन तरह के स्प्राउट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, कितना अच्छा। पिछली बार हम लोग यही कह रहे थे कि विश स्प्राउट्स बातें कर रहे थे इसके बारे में, इस साल में आई तो रोज मिल रहे हैं, हमारी तो मस्ती है, उनको खा लेते हैं, दोपहर के खाने की जरूरत नहीं पड़ती, और खाते भी हैं तो आधी रोटी से पेट भर जाता है। तो फ्रूट खाना है शाम के 5 बजे के बाद न खाइए, अगर आप फ्रूट थोड़े नट्स के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नट्स में ओमेगा 3 ऑयल्स होते हैं, और उसके साथ ही नट्स में प्रोटीन होता है, तो जो शुगर होती है फ्रूट में उसका अब्सॉर्प्शन अपने आंतड़ियों से धीरे धीरे होता है, शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए हम कहते हैं अगर मिठाई की टोली मिली है तो रोटी के साथ खाइए, जैसे मीठा धीरे धीरे बढ़े करके ऊपर न चढ़ जाए, जैसे ऊपर चढ़ेगा तो इंसुलिन खूब बढ़ जाएगी, फिर एकदम बुरी तरह से 2 घंटे में भूख लगेगी, आप कहेंगे पत्थर भी खिला लो तो खा लेंगे, करके देखिए। सुबह सुबह उठ के 2 ग्लास जूस के पीजिए या 1 ग्लास जूस का, 2 घंटे में बुरी तरह भूख लगेगी। सुबह सुबह को उठ करके आप किसी को पिला दीजिए कोका कोला या मीठा चीज, 2 घंटे में उनकी हालत खराब हो जाएगी। दैट इंक्लूड्स कैलोरी फ्री ड्रिंक्स जो आजकल मिलते हैं, 0 कैलोरी सोडा, क्योंकि ब्रेन उसको परसीव एज ए शुगर ही करता है। 2 घंटे के बाद जो 0 कैलोरी आप पीते हैं कोका कोला, उससे इतनी भूख लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ जी, नहीं मेरे को सवाल धीरे से पूछिए। हाँ, कोई नुकसान नहीं, हमारी सारी उम्र खाली पेट चाय पीने से ही निकली है, कोई नुकसान नहीं, हमारा कल्चर चेंज हो गया है। हमारी दादी नानी 11 बजे तक तो खाती नहीं थी, झाड़ू कटके चक्कियों से उनको फुर्सत ही नहीं थी, मैंने देखा 11-12 बजे तक नहीं खाती थी, मेरी सास तो 1 बजे खाती थी, क्या है काम नहीं खत्म हुआ, भर पेट खा लूंगी तो मेरे को मैं काम कैसे करूंगी, ज्यादा से ज्यादा 1 कप चाय पी करके सारा दिन चलती रहती थी जी। तो चीनी डालिए, लेकिन धीरे धीरे करके चीनी कम कीजिए, तो ऐसे कम कीजिए, हम इसको बोलते हैं अपनी जबान को दीजिए धोखा। कैसे देते हैं जबान को धोखा, पहले तो 1 चम्मच या 2 चम्मच पी रहे थे, वो पी रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद उसका आधा थोड़ा सा कम कर दिया, 1 हफ्ते के बाद थोड़ा और कम कर दिया, उसके बाद थोड़ा और कम कर दिया, आखिर आधे चम्मच पे आके चैन की बंसी बजाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आधा चम्मच, क्योंकि आधा चम्मच टीस्पून, ये नहीं इतना बड़ा सारा चम्मच पी रहे हैं, तो उसका मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा 20 कैलोरी शुगर से आया, आपको इतना बुरा नहीं होगा, ठीक है। अगर उसके साथ अखरोट बादाम और मूंगफली खा ली और थोड़े स्प्राउट्स खा लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि मिला के खा रहे हैं किसी के साथ। पर उसके जगह आपने डबल रोटी खा ली और रस खा लिया तो ब्लड शुगर बहुत ही बढ़ जाएगी। यहां से सबसे फेवरेट लोगों का चाय के साथ है, 2 बिस्कुट खा लो, डबल रोटी खा लो, सैंडविच खा लो, रस्क जो होता है वो खा लो, 1 रस में 120 कैलोरी की शुगर होती है, आप समझ लीजिए कितनी शुगर होती है, लिखा है उसके पीछे। हाँ जी, सूप कह रहे हैं आप, अच्छा सूप तो कई तरीके होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सूप ऐसा हो जैसे कि वो कंप्लीट मील हो जाए आपका, तो वो जो सूप है तो बड़ी अच्छी चीज होती है, उस सूप में आप सब अंश डालेंगे, उसमें सब सब्जियां डालेंगे, और उसमें अगर आप उसमें दाल डालें तो वो सबसे अच्छा कंप्लीट सूप होता है। दाल की कई वैरायटीज उसमें डाल सकते हैं। हम तो टिपिकली दाल बनाते हैं उसमें सारी सब्जियां डाल देते हैं, उसको पतला रखते हैं, तो उससे आपको कई तरह के तत्व मिल जाते हैं खाने के। तो दाल भी मिलती है तो प्रोटीन भी मिलता है। पर एक चीज याद रखिए, अगर उस सूप में आप एक चम्मच घी डाल देंगे तो आपको बड़ी तृप्ति रहेगी, कई देर तक भूख नहीं रहेगी। तो ये जो घी और तेल अच्छा होता है, सारी सब्जियां मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ या कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ, और अच्छी तरह से सब्जी उठाते हैं तो नीचे से घी तेल दिखाई देता है, इतना खाना जरूरी है। टाइमिंग एक्चुअली मैंने किताब में बड़ी अच्छी तरह लिखी है, लेकिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर तीन मील खा रहे हैं, जैसे मैं बताती हूँ, अगर उम्र है 60 से अधिक तो खाइए केवल 2 बार, अगर उम्र है 60 से कम तो खा सकते हैं 3 बार। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टिपिकल हमारे यहाँ का टाइम जो है इंडिया का मैंने देखा है 8 बजे, 1 या 2 बजे, और फिर शाम को 7 और 8 बजे। 2 मील्स के बीच में 5 या 6 घंटे का अंतर जरूर दीजिए, जैसे उस टाइम में इंसुलिन गिर जाए। पर सबसे इम्पोर्टेंट है रात के खाने और सुबह के खाने में अंतर रखिए। अगर आपका नॉर्मल वेट है 12 घंटा, अगर आप ओवरवेट हो, डिपेंडिंग ऑन ओवरवेट, 10-15 किलो ओवरवेट हो तो 14 घंटा, अगर 15-20 किलो ओवरवेट है तो आप 16 घंटे, और अगर 25 किलो से ज्यादा ओवर वेट है तो अपने को 18 घंटे में ले आइए, और आपका मोटापा 1 साल में खत्म। आप लोग तो बड़े गजब के सवाल पूछ लेते हो। हमने किताब, अगर आप कोशिश हो सके तो हम ये करेंगे, हमने ईमेल पे किताब भेजी है ई कॉपी, तो अगर कोई प्रिंट करवाना चाहे या कुछ तो इसका बंदोबस्त करेंगे हम जरूर। उसके पीछे हमने ये लिखे हुए हैं, कल बोला है कैलोरी फ्री ड्रिंक्स। हमने अभी आपको बताया 1 चम्मच शहद 5 चम्मच मीठे के बराबर, चीनी के बराबर। तो आप ना समझिए कि शहद बहुत हेल्दी चीज है। शहद बड़ी एंटी इन्फ्लामेटरी हुआ करती थी, खांसी जुकाम हुआ शहद पिया काम बराबर ठीक हो जाता था। सच्ची बात है, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक हो जाता था। पर आज मधुमक्खियों का तादाद और उनकी जो जो नंबर है बहुत कम हो गया है, क्योंकि मधुमक्खियां जो हम लोग स्प्रे करते हैं ना पौधों पे पेस्टिसाइड, उससे मधुमक्खियां सारे विश्व की मधुमक्खियां 30% बची हैं, 70% मर चुकी हैं। तो आजकल जो भी आपको शहद मिलता है 90% शहद इंक्लूडिंग अमेरिका में शुगर कंटेमिनेशन है, और वो शुगर बहुत हैवी शुगर है। मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उसमें गुड़ डाल दीजिए, लेकिन शहद न डालिए। समझ में आ गया, गुड़ डाल दीजिए थोड़ा सा। तो हमने बोला नींबू पानी, हमने कहा अगर आप नींबू पानी में जिंजर डाल देंगे, जिंजर मीन्स अदरक डाल देंगे तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि अदरक जो है पेट को भी ठीक करती है, सारे शरीर के इन्फ्लामेशन को ठीक कर देती है, और आपको खांसी जुकाम नहीं होगा। मैं आपके सामने बैठती हूँ, मैं यही कह सकती हूँ कसम से कि 5 साल से मुझे कभी कोल्ड नहीं लगा। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहां विंटर में टेम्परेचर -30 हो जाता है। मैं पैदल 1-1 मील चली जाती हूँ 0 डिग्रीज पे, अच्छी तरह से कपड़े पहन करके, लेकिन ठंड नहीं लगती, कोल्ड नहीं होता, इसीलिए कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, खाना ठीक तरह से खाते हैं, बार बार नहीं खाते, शुगर अपने बॉडी के शुगर लेवल को नीचे रखते हैं। उसी से ही आपकी सेहत बनती है। हमारी दुश्मन हमारी चीनी और हमारा मैदा और आटा है, तो उसको संभाल के खाइए। आहा, आप तो बहुत ही उस्ताद हो। ये अभी किताब पढ़ेंगे मेरी, तो उसमें लिखा है कि अगर उपमा बनानी है तो आप उसको सूजी से न बनाएं, पतले दलिये से बनाएं। दलिया 3 तरह का मिलता है, आप जानते हैं, पतला दलिया, मध्यम दलिया, मोटा दलिया। मोटा दलिया खाएं, बाजार से क्वेकर ओट्स जो पश्चिमी है वो न खाएं, क्योंकि वो जो ऑलरेडी प्री कुक्ड हैं जल्दी से बन जाते हैं लेकिन शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। तो आप अपना जो मोटा दलिया है वो दलिया करके खाएं, और उसमें चीनी की बजाय उसकी जगह खजूर डाल दिए या थोड़ा गुड़ डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आप उपमा बना रहे हैं वो पतले दलिये से बनाएं, क्योंकि वो कोर्स ग्रेन है, वो उसका अब्सॉर्प्शन कम होता है। सूजी जो है वो मैदे का काम करती है, शुगर लेवल बहुत बढ़ा देती है, तो जितनी कम सूजी खाएं उतना अच्छा है। मैं तो सीरा भी बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो उसमें मोटा ये वाला थोड़ा सा जो पतला वाला दलिया है वो डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ, और उसमें से मैं ये जो हलवा है वो बना देती हूँ। बड़ा अच्छा, अच्छे से अच्छा हलवा बनता है, उसमें बादाम पीस के भी डाल देते हैं, तो वो हेल्दी भी रहता है, शुगर का लेवल भी ज्यादा नहीं बढ़ता उससे। तो बच्चों को खिलाइए वो अच्छी तरह से। हाँ, किसमें आएगा काम? और ये बहुत ज्यादा हमने लिखा है ना मोटापे की किताब के पीछे, 6 तरह के लिक्विड्स लिखे हैं उसमें हम। टाइमिंग सारे दिन, सारा दिन पी सकते हैं, सारा दिन पर अगर आप उसमें गुड़ डाल रहे हैं तो सारा दिन ही पी सकते हैं, बिना गुड़ वाला सारा दिन पी सकते हैं, अगर गुड़ वाला पी रहे हैं तो सिर्फ सुबह को पीजिए और फिर बंद कर दीजिए। ठीक, नॉर्मल पानी में ही डालिए ना, तो और किस में डालेंगे, जो फिल्टर्ड वाटर है उसमें डालिए। गर्म पानी आपके लिए एक तक बेस्ट से बेस्ट चीज है। मुझे ये क्या है, गर्म पानी है ये, गर्म पानी और ठंडे पानी में कौन बता सकता है मुझे क्या फर्क है, अपनी आंतड़ियों पे क्या इफेक्ट पड़ता है गर्म वर्सेस ठंडे पानी, कुछ तो बताइए। इनको तो मेडल दे दो आप, जिसको कब्जी करनी है सुबह उठ के ठंडा पानी पी लीजिए, जिसको कब्जी नहीं भी होनी हो जाएगी। अमेरिकन लोगों को मैक्सिमम कब्जी रहती है, बर्फ का आधा ग्लास होता है और आधा ग्लास पानी का होता है, फिर मुझे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन है। मैंने कहा इसको तो हटाओ, पहले गर्म पानी पियो, अब वहां पे गर्म पानी पीने लग गए हैं, वहां भी होशियार हो गए हैं, गर्म पानी पीने लग गए हैं। तो ये ठंडा पानी तो छोड़ ही दीजिए, रूम टेम्परेचर और अगर गर्म पी सकते हैं तो बस उसके जैसी कोई चीज नहीं। पर यहां गर्मी होती है इसलिए मटके का पानी पीजिए तो अच्छा है, पर ठंडा ना पीजिए बर्फ वाला, फ्रिज का पानी ना पीजिए तो अच्छा है ना। नहीं है फ्रिज, क्योंकि आप बासी खाना थोड़ी खाते हैं। मैं कहती हूं जो बासी खाना खाए उसकी मानसिक वृद्धि खराब, बताइए आप, आपसे पूछिए, आपको मानसिक का बहुत शौक है, ठीक है ना, तो मानसिक वृत्ति बिगड़ जाती है आपकी सड़ा हुआ खाना खाने से, फ्रिज का रखा हुआ खाना है, लोग वहां पे 6-6 दिन का रखा खाना खाना लेते हैं, वो गलत बात है, क्योंकि जो उसमें जितने भी मसाले होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हमारे जो मसाले वो सीड से बने हैं, सीड के अंदर ऑयल्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हाँ, मैं एक चीज बता देती हूँ आपको मिर्ची के बारे में, अगर आप लाल मिर्च ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन ग्रीन मिर्ची बराबर अंदाज में खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी खाएं कि आपकी लाल टपक रही हो। मिर्ची जो खाने से इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और विटामिन ई बहुत होता है, तो थोड़ी मिर्ची खाना, अब सिर्फ हरी मिर्ची, हम नहीं वापरते लाल मिर्ची कभी, हरी मिर्ची। मूसली, ये है पश्चिमी धोखाधड़ी, जैसे आपको बताया ना कॉर्नफ्लेक्स खाओ हार्ट हेल्दी फाइबर, मूसली भी हार्ट हेल्दी फाइबर है। मैं कहती हूँ महाराज अपने बाप दादा के पास जाइए, वही खाना शुरू कर दीजिए, बंद करिए दूसरे। अरे मैंने कहा ना, अगर उम्र है 5 से अधिक तो खाइए केवल 2 बार, पहला खाना 11 बजे। एग्जैक्टली, हाँ। शिव बाबा जब से आ